शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्य मनीषम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुषं हरिं वन्देऽहं करुणाकरम् रघुवरं भूपाल चूड़ामणि।
ऊ तो हम आपको बता ही चुके हैं, अरे वही रत्नावली वाली घटना। तो बस मन में बैराग जागा तो बैरागी बन गए, सोचा कि अब बस राम जी के चलाए ही चलेंगे। भटकते भटकते पहुंच गए अयोध्या जी। दिन भर साधुओं की संगत करते, भीख मांग कर खाना खा लेते और रात को जाए के जन्मभूमि के चबूतरे पे सो जाते। एक रात देखा राम जी बाल रूप धारे घुटने के बल चलते चलते हमरे पास आके बैठ गए। मुंह में खीर लगी हुई थी। बोले, तुलसी भैया हमारी कथा ना लिखोगे? मैंने कहा, प्रभु आप भी एक दो बजरंग बली पहले ही पीछे पड़े हुए हैं। तो कहने लगे, अंजनी कुमार को तो हमने ही बोल रखा है। मैं गिर पड़ा चरणों पर, प्रभु काहे राई के सर पे पहाड़ धर रहे हैं? तो बोले, तुम लोक भाषा में हमारी कथा लिखना आरंभ तो करो, मां सरस्वती स्वयं तुम्हारे कंठ विराजेंगी और बजरंग बली तो हैं ही, तुम्हें भटकने ना देंगे। अंतर ध्यान हुए प्रभु, मैं अश्रुपूरित नेत्र लिए गा रहा था।
तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देखी के मुखार बिंद, देखी के मुखार बिंद, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि बनिया ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमकी चलत रामचंद्र।
दूसरे ही दिन एक स्थान मिल गया। एक बूढ़े पंडित जी जो कथा नहीं कर पाते थे, उन्होंने अपना स्थान दे दिया। बजरंग बली की कृपा से राम कथा का आयोजन हुआ। सचमुच मां सरस्वती की बड़ी कृपा हुई, वाणी में एक अद्भुत प्रवाह आ गया। बजरंग बली नित्य आते हमारी राम कथा सुनने, और मैं भी मानो खूब रस ले लेके बजरंग बली को ही कथा सुनाता। एक दिन बजरंग बली नहीं पधारे, मेरा तो मन ही ना लगा कथा बाँचने में। बूढ़े पंडित जी ने भी कहा, तुलसी भैया आज कथा में रस नहीं मिला। मैं क्या कहता, संझा में आए बजरंग बली, कहने लगे, का हुआ तुलसी भैया? मैं मौन रहा। लगता है तुलसी भैया हम पे कुपित हैं, मैंने झल्ला के कहा, आप काहे नहीं आए आज? अरे भाई, राम जी का काम था सो करने गए थे,
और हम जो कर रहे हैं वो राम जी का काम नहीं है।
ठीक है भैया, कल हम पक्का आएंगे।
नहीं नहीं नहीं, पहले आप वचन दीजिए।
का वचन दें बोलोगे तो?
वचन दीजिए कि जहां कहीं जब कहीं भी राम कथा का पाठ होगा आप वहां उपस्थित रहेंगे।
बजरंग बली मुस्कुराए, बोले तथास्तु।
राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
राम नवमी का दिन था, भगवान शंकर राम जी और जानकी मैया को प्रणाम कर, पार्वती अम्मा, बाबा नरहरिदास, आचार्य जी, गुरु माँ और बजरंग बली को नमन कर, सब देवी देवताओं को स्मरण कर, श्री राम चरित मानस का शुभारंभ किया।
स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनउ बिसद राम गुन गाथा। संबत सोरह सौ इकतीसा, करउ कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहां चलिया।
सरयू जी की कलकल ध्वनि के साथ श्री रामचरित मानस का लेखन अबाध गति से चलने लगा। अयोध्या के पंडितों के एक वर्ग में ईर्ष्या का भाव जागा, पर मैं उसकी चिंता किए बिना ही मानस का लेखन करता रहा। बूढ़े बाबा की कुटी के चारों ओर बंदरों का झुंड दिन भर मेरे साथ खेला करता, पर ज्यों ही मैं लिखने बैठता वो सारे बंदर चारों ओर से मुझे घेर के बैठ जाते। एक दिन सुबह जागे तो देखा एक आदमी अचेत पड़ा था, बंदरों ने उसे काट खाया था। बस अयोध्या जी में प्रसिद्ध हो गया कि तुलसीदास की रामायण को चुराने के लिए ईर्ष्यालु पंडितों ने चोर को भेजा, लेकिन वानर सेना ने आक्रमण करके बचा लिया। इस घटना के बाद न जाने क्यों मेरा मन भी अयोध्या जी से उचट गया। वैसे भी रामचरितमानस का अयोध्या कांड समाप्त हो चुका था। रामलला, जानकी मैया और लखनलला वन में कष्ट भोग रहे हो, और मैं यहां अयोध्या में सुख से रहूं। बूढ़े बाबा को प्रणाम किया और चल पड़ा काशी की ओर।
कहां के पथिक कहां किन है गमनवा, किन है गमनवा रामा, किन है गमन। कहाँ के पथिक कहाँ किन है गमनवा, किन है गमनवा रामा, किन है गमनवा। ग्राम बधून पूछ सिया से कौन से प्रीतम कौन से देवरवा। ग्राम बधून पूछ सिया से कौन से प्रीतम कौन से देवरवा। सिया मुस्काई बोली मृदु बानी सिया मुस्काई बोली मृदु बानी। सांवरे से प्रीतम गौर सो देवरवा। कहाँ के पथिक कहाँ किन है गमनवा किन है गमनवा रामा किन है गमनवा।
काशी पहुंचा तो बाल मित्र गंगा राम का आतिथ्य स्वीकारा। वहां मिले टोडरमल जी, उन्होंने ही मेरे काशी में रहने की व्यवस्था कर दी हनुमान घाट में। बड़े स्नेही थे टोडर भाई, मुझे कोई कष्ट हो तो उसकी पीड़ा उनको अधिक होती थी। बड़े विद्वान थे, साहित्य का मरम समझते थे। एक दिन मानस के कुछ अंश पढ़कर सुना रहा था तो अभिभूत हो गए। कहने लगे, तुलसीदास जी, आपकी कविता में प्रेम और भक्ति का स्रोत मानो फूट पड़ा है, लेकिन कबीर दास जी ने जो लिखा है उससे समाज पर बड़ी गहरी चोट लगती है। मैंने कहा, टोडर भाई, कबीर दास जी जैसा महान कवि तो हुआ ही नहीं। क्या है ना, प्रत्येक कवि अपने समय काल और परिस्थिति के अनुसार रचना करता है। कबीर बाबा ने जिस समय लिखा उस समय समाज का थोड़ा सा हिस्सा भ्रष्ट हुआ था, सो उन्होंने अपनी कविता से उसका उपचार किया। जैसे अगर किसी के शरीर पर कोई बड़ा फोड़ा हो जाए तो वैद्य उसकी चीर फाड़ करता है, वैसे ही कबीर बाबा ने भी की। लेकिन जिस काल परिस्थिति और समय में मैं लिख रहा हूं, समाज का बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्ट हो चुका है। जैसे अगर किसी के पूरे शरीर पर फोड़े हो जाएं, तो फिर चीर फाड़ और मलहम से काम नहीं होता, पूरे रक्त को शुद्ध करना पड़ता है। मैं अपनी भक्ति रूपी औषधि से समाज के रक्त को शुद्ध करना चाहता हूं। हमारा एक चेला बन गया था रामू, अचानक बीच में बोल पड़ा, गुरुदेव, ये कबीर दास जी की कविता हमरे समझ में ना आवे। मैं हंस पड़ा, अरे पगले, तेरे लिए तो हम लिख रहे हैं, कबीर दास जी ने तो हमारे लिए लिखा है।
मन लागो मेरो यार, फकीरी में 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 मन लागो मेरो यार, फकीरी में।
धीरे धीरे काशी में हमारी एक मित्र मंडली बन गई। हमारे दोहे और चौपाई अब हमारी कुटिया से निकल के काशी की गलियन में पहुंच चुके थे। जहां प्रशंसा करने वाले थे वहीं निंदा करने वाला एक वर्ग भी था। वो कबीर बाबा ने लिखा है ना,
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए।
काशी के पंडितों का एक वर्ग हमारी निंदा करता फिर रहा था कि ये तुलसिया का साहस देखो, भाखा में रामायण लिखे है ससुर। दूसरा कहता कलजुग है पंडित जी कलजुग, स्वयं को बाल्मीकि समझे है नासपिटा। हमारे कान में सब पड़ता था, राम जी मिथ्या ना बुलाए बहुत बुरा लगता था। उस दिन जब बजरंग बली आए तो मैंने कहा उनसे, अंजनी कुमार अरे काहे हम पे ये सब पत्थर बरसावत हो, हम तो बस राम जी का नेह चाहते हैं। बजरंग बली ने कहा पहाड़ देखे हो तुलसी, बरखा आती है तो उसकी बूंदें कितना आघात पहुंचाती हैं उसे, आंधी अंधड़ आते हैं तो भी अचल अटल खड़ा रहता है वो। तू चिंता जिनकर तुलसी, बस पहाड़ बन जा।
बूंद आघात सही गिरी कैसे, बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे।
एक दिन टोडर भाई आए तो मैंने कहा टोडर भाई मेरी इच्छा है कि गांव गांव में अखाड़े और व्यायाम शालाएं बने, गांव के सब युवक किशोर व्यायाम करें बलिष्ठ बने। टोडर जी ने पूछा काहे गोस्वामी जी। मैंने कहा कभी सोचा है टोडर भाई कि भारतवर्ष के गांव पर जब कोई संकट आता है तो गांव का गांव क्यों उजाड़ हो जाता है। मैं एक ऐसे समाज की रचना करना चाहता हूं जो अपनी रक्षा आप कर सके, कोई बाढ़ आवे बीमारी आवे किसी दरिद्र की झोपड़ी उड़ जाए आंधी में तो कौन आएगा मदद करने। हर गांव में योग्य युवक हो जो बहुजन हिताय काम करें। टोडर जी ने कहा अरे तुलसीदास जी कौन करेगा ये सब संगठन। मैंने कहा टोडर भाई मैं भगवान श्री राम का भक्त हूं, धनुर्धारी राम का भक्त, कोई असुर आवे तो उसका शमन करने वाले राम का भक्त हूं मैं। मेरा बजरंगी एक हाथ में संजीवनी पर्वत उठाए हैं तो दूसरे हाथ में गदा भी रखे हैं। ये जो हमार अहिंसा है ना ये कायरन की अहिंसा है। अरे अहिंसा शोभा देती है वीर को, जैसे राजा उपवास करे तो कहलाता है उपवास, भिखारी के उपवास को उपवास नहीं कहते। टोडर जी को हमारी बात पट गई। दूसरे ही दिन आसपास के सब गांवों से युवक किशोर जमा हुए, संकल्प लिया, गांव गांव में बजरंग बली के मंदिर के साथ अखाड़े और व्यायाम शालाएं खुल गई।
नाथ दैव कर कवन भरो सोशिय सिंधु करिय मन रोषा, कादर मन कहूं एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा।
एक दिन काशी में यूं ही घूमते घूमते बहुत बरसों के बाद मेघा भगत जी के साथ भेंट हुई। मैंने कहा कहा भैया भुला दिहिन अपन अनुज को, तो कहने लगे अरे तोहरे ही काम तो करत है, राम जी मन में विचार दिए हैं कि ई बरस काशी जी में राम जी की लीला खेली जाए। मैंने कहा बहुत नीक सोचे हैं भैया, मुदा हम तो कहीं कि एक स्थान पे काहे, अरे पूरी काशी नगरिया में राम जी की लीला हो तो लगे कि राम जी के असल भगत यहीं रहते हैं। तो बोले, सो तो ठीक है तुलसी भैया, पर इस सब पंडतन का विरोध देख के मन में बड़ी निराशा जागे है। मैंने कहा, मेघा भगत जी, ई सब पंडतन की तो यही मनसा है कि भगवान से भगत की दूरी बनी रहे, तब ही तो इनको इनकी दलाली मिलेगी। अब हम भाखा में रामायण लिखें, आप राम जी की लीला कराओ, तो भगवान का कब्जा तो इन दुष्टन के हाथ से छूट जाए। अरे आप तो ये सब चिंता छोड़ो राम जी पे और कराओ जम के राम लीला, बाकी राम जी की लीला है वही संभाल लेंगे।
प्रभु सी नगर की जय सब का जा, हृदय राखी कोसलपुर राजा।
बड़ी लगन से चल रहा था श्री रामचरितमानस का लेखन। प्रतिदिन भोर भय गंगा जी में डुबकी लगाए के बजरंग बली को बिठाते पास और मनोयोग से लिखते रामचरितमानस। दुई बरस सात माह और 26 दिनों में श्री रामचरितमानस का लेखन पूर्ण हुआ, राम जी के विवाह के दिन।
पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोहमलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैः दह्यन्ति नो मानवा।
हमारी प्रेरणा थे भगवान शंकर। सो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाए के माँ पार्वती और भगवान शंकर को रामचरितमानस सुनाए और मानस वही छोड़ाए, कहिन के प्रभो आप असीसोगे तो जग भी स्वीकारेगा। प्रातः काल देखा उस पे लिखा मिला, सत्यम शिवम सुंदरम, और बाबा विश्वनाथ की सही थी।
जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ।
श्री रामचरितमानस का लेखन पूरा हुआ तो मानो हमारा स्वप्न साकार हुआ। हमने बजरंग बली से कह दिया कि आपने प्रेरणा दी तो लिख लिया मानस, बजरंग बली अब अपनी शक्ति दे दो तो कराए दे जम के रामलीला। भिड़ गए हम मेघा भगत जी के साथ रामलीला की तैयारी में। हमारे विरोधी पंडतन का क्रोध भी गुदगुदा रहा था। हमका अंदेशा रहा कि हमरी रामलीला के पहले ई सब विरोधी पंडतन की लीला जरूर होई। दशहरे की नवरात्र का पहला दिन रामलीला के सारे पात्रों को तैयार कर रहे थे श्रृंगार कक्ष में मेघा भगत जी। मैं टोडर भाई और अन्य युवकों के साथ बाहर की व्यवस्था देख रहा था कि तभी 10-12 युवकों का एक दल आया। उनका मुखिया था मेरे सहपाठी बटेसर का बिटुआ।
आपसे तनिक बात करनी है।
मैंने कहा, कहिए।
आप का समझते हैं अपने आप को, राम जी की लीला कराएंगे यहां? दूसरा बोला, भाखा में न जाने का अंड बंड लिखा है भगवान जी के बारे में। तीसरे ने कहा, अरे ऐसन भ्रष्ट पाखंडियों को तो मार मार के भगाना चाहिए काशी से। चौथा स्वर बड़ा उजड्ड था, बंद कराओ अपनी लीला फीला और जलाओ अपनी रामायण भई, नहीं तो भुरकस बनाए के बहाए देंगे तुहार खुपड़िया गंगा जी में। हो हल्ला सुन के टोडर भाई दौड़ते हुए बाहर आ गए, साथ ही आए अन्य युवक भी। का हुआ गोस्वामी जी? मैंने कहा कुछ नहीं। रामू वहीं खड़ा सब देख रहा था, बोल पड़ा, अरे टोडर भैया, ई सब लईका हमारे गुसाई जी को गरिया रहे थे। मैं मुस्कुराया, तो टोडर जी ने तो आपा ही खो दिया। इतना साहस आप लोगों का? गोस्वामी तुलसीदास को अपशब्द कह रहे थे आप लोग? अगर असली पंडितन की संतान हो तो अब बोल के दिखाओ। और आप भी गोस्वामी जी विचित्र हैं, इतना अपमान होने के बाद भी चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा, टोडर भाई, अगर इस बूढ़े को अपशब्द कह करके इन बच्चों को सुख मिलता है तो सुख लेने दें, इनका विरोध करके इनका सुख मत छीनिए। अरे ये भी तो राम जी की प्रजा है। चलिए चलिए, रामलीला आरंभ करने का समय हो गया। मैं सबको लेकर चल पड़ा मंच की ओर, तभी पीछे से एक असभ्य स्वर सुनाई दिया, अरे पाखंडी, देव भाषा तो आती नहीं, भाखा में होशियारी दिखा रहा है। मैं मन ही मन कहने लगा, प्रभो तुम्हारा वर्णन भाखा में तो क्या, देव भाषा संस्कृत में भी कोई नहीं कर सकता। मंच पर से पट हटा। मेघा भगत जी ने घोषणा की, आज रामलीला का शुभारंभ हो, उसके पूर्व महाकवि गोस्वामी तुलसीदास मंगलाचरण करेंगे। बड़े भाई का आदेश, अभी अभी हुआ अपमान, रामलीला आरंभ होने का आनंद। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अलौकिक तेज, उनका दिव्य स्वरूप मेरी आत्मा में समा गया। नयन मुंदे, हृदय में असीम आनंद, झरझर बहती अश्रु धारा और वाणी में राम रस घुलने लगा।
श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
अगले 9 दिनों तक तो मानो मेला लगा रहा, आसपास के सारे राम भक्त काशी में जमा हो गए, पूरी काशी नगरी राममय हो गई। बहुत सुख मिला मन को, बहुत दिनन के बाद
तुलसी की झोली भगवान ने आनंद से भर दी।